सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धे विवुत्थसयले अज्जत्तबहित्तबन्धनुं मुक्के भक्तिये अहं नमियुं पुनो पुनो बंदनम वोच्छम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें अभी हमारा बंधन अनियोग द्वार चलेगा। आज से ये 14वीं पुस्तक चालू हो जाती है, बंधन अनियोग द्वार देखते हैं अभी हम। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा है उसका नीचे अर्थ देखते हैं। सब पदार्थों का साक्षात्कार करने वाले, यानी सभी पदार्थों को जानने वाले, प्रत्यक्ष जानने वाले, साक्षात्कार करने वाले, व्युद्ध सैले अज्जत्त बहित्त बंधन मुक्के, और भीतर तथा बाहर के सब बंधनों से मुक्त हुए सिद्धों को, भीतर के बंधन और बाहर के बंधन। हम देखते हैं ना कि जीव में भी लगाते हैं ना द्रव्य बंधन और भाव बंधन, तो भीतर के भी बंधन और बाहर के भी बंधन इनसे मुक्त हो गए ऐसे सिद्ध भाव बंधन। हाँ, ऐसे सिद्धों को बार बार भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मैं, यानी जो ग्रंथकर्ता कह रहे हैं, बंधन नामक अनुयोग द्वार का कथन करता हूँ। अपना प्रकृति अनुयोग द्वार समाप्त हुआ, अभी बंधन अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। खंड तो वही पांचवा खंड चल रहा है, षट खंडागम है ना, उसमें से अपना पांचवा खंड चल रहा है। हम सूत्र पढ़ते हैं। ये प्रस्तावना आप सब पढ़ लेना, क्या विषय आया है, आता है यानी आने वाला है, उसकी बराबर अपने को बात पता चल जाती है। बंधने ति चहुविहा कम विभाषा है के कहा कम विभाषा, क्रम के लिए कम विभाषा। बंधो बंधगा बंधनिज्जम बंध विहाणेति, बंधन इस अनुयोग द्वार में बंधन की क्रम से चार प्रकार की विभाषा है। विभाषा ने उसका जो वर्णन है विशेष प्रकार से उसके प्ररूपण करने में आएगा, तो चार बातें बताएंगे यहाँ। बंध बंधक, बंधनीय, बंधनीय ने बंधने योग्य उसको बंधनीय कहते हैं, और बंध विधान ये उसका प्रोसेस जो है उसको बंध विधान कहेंगे। बंधक यानी जो बांधता है उसको बंधक कहा, वो ध बराबर दिख नहीं रहा बंधक में, घ जैसे दिख रहा है, बंधक करना उसको। कम क्रम के लिए क्रम कम आया है, कम नहीं है वो, कर्म के लिए कम आता है, और ये क्रम शब्द के लिए वो कम आया है। कम विभाषा ने क्रम विभाषा नीचे लिखा है ना, उसका अर्थ देखिए, क्रम से चार प्रकार की विभाषा उसके लिए कम विभाषा कहा। चौ विहा कम विभाषा, बंधना इसका नाम बंधन है, इससे बंध की सिद्धि होती है। जो बांधता है वह बंधन है, इससे बंधक का ग्रहण होता है। क्या कहते हैं, बंधना यानी बंधन के अलग अलग अर्थ करते हैं, और उसके द्वारा ये चार जो अलग विभाषा भी बताए नहीं उसकी सिद्धि करते हैं, कि बंधना उसके द्वारा बंध है ये बात सिद्ध होती है। जो बांधता है उसके द्वारा उसको भी बंधन कहेंगे, तो उसके द्वारा बंधक बांधने वाला उसकी सिद्धि होती है, उसका ग्रहण होता है। अब बांधने वाला है तो जो बांधा जाता है, जिसको बांधा जाता है, हाँ, तो जो बांधा जाता है, इस प्रकार कर्म साधन का आश्रय करने पर बंधन शब्द से बंधनीय का ब के ऊपर बिंदी लगाना, बंधनीय का ग्रहण होता है। बंधनीय ने जो बांधा जाता है वह, जिसके द्वारा बांधा जाता है, इस प्रकार करण यानी उसका साधन, पहले जो बांधता है ने उसको कर्ता के रूप में लिया, बांधा जाता है उसको कर्म के रूप में लिया, और उसका साधन क्या है, तो जिसके द्वारा बांधा जाता है, इस प्रकार करण साधन में बंधन शब्द की सिद्धि करने पर उससे बंध विधान का ग्रहण होता है। बंधन शब्द को ही अलग अलग प्रत्ययों से देखने पर है ना, देखो ये जो कारक जो है ना शब्द की सिद्धि करने पर ऐसा आया, तो पहले उन्होंने बंधना ये बात है, यानी वो क्रियापद लिया बंधना। कोई वाक्य होता है तो एक कर्ता होता है, उसका कर्म होता है, क्रियापद होता है, और उसका साधन जो है, जैसे राम ने आम खाया हम कहते हैं ना, और फिर चम्मच के द्वारा खाया, बीच में कोई साधन भी ले लेंगे हम, तो ये खाया, ये खाना ये क्रिया हो गई, राम उसका कर्ता हो गया, और फिर क्या खाया तो आम उसका, उसको कर्म कहते हैं। कौन से साधन के द्वारा किया वो क्रिया, कौन से उसको करण कहते हैं। वैसे यहाँ बंधना जो है बात, तो बंधना ये क्रियापद हमने लिया, तो उसके द्वारा बंधन अगर हम उसकी बात देखेंगे तो वहां बंध सिद्ध होता है। वो बांधने वाला कौन है, कर्ता कौन है, तो बंधक बात सिद्ध हो गई। किसको बांधा तो बंधनीय है यहाँ, और किसके द्वारा बांधा तो उसके बंध विधान की बात सिद्ध हो गई। इसलिए बंधन का विशेष व्याख्यान क्रम से चार प्रकार का ही होता है। इसलिए यानी बंधन जब कहेंगे तो उसमें से ये चारों ही बातें निकलती है, तो चारों ही प्रकार का व्याख्यान इसमें करेंगे। विशेषार्थ, यहाँ व्युत्पत्ति पूर्वक बंधन के चार भेद किए गए हैं, बंध, बंधक, बंधनीय, बंध विधान। कोई किसी से बंधता है, इससे बंध की सिद्धि की गई है। जो बांधता है वह बंधक है, और जो बंधता चाहिए, पहले बांधता है ना, दूसरी बार बांधता लिखा है, और जो बंधता है वह बंधनीय है। बंधता चाहिए, सेकंड टाइम जो बांधता लिखा है उसके लिए बंधता चाहिए। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, जो बांधता है वह बंधक है, और जो बंधता है वह बंधनीय है। इससे बंधक और बंधनीय की सिद्धि की गई है। जब कोई वस्तु बंधती है, बंधती है हो गया, बंधती है, तो वह कितने प्रकार से बनती है, इसके द्वारा बंध विधान की सिद्धि की गई है। इस प्रकार बंधन के चार भेद ही हो सकते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। द्रव्य का द्रव्य के साथ तथा द्रव्य और भाव का क्रम से जो संयोग और समवाय होता है, यानी संयोग होता है और समवाय होता है, वह बंध कहलाता है। यानी बंध किसमें किसमें हो सकता है, द्रव्य का द्रव्य के साथ संयोग होगा, और द्रव्य का भाव के साथ वो समवाय होगा। द्रव्य और भाव के भेद से भिन्न दो प्रकार के बंध के जो करता है वे बंधक कहलाते हैं। यानी उसमें दो भेद हो गए, द्रव्य और भाव के रूप से दो प्रकार के कर्ता हो गए, वे बंधक कहलाते हैं। बंध के योग्य पुद्गल द्रव्य बंधनीय कहा जाता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से भेद को प्राप्त हुए बंध के भेदों को बंध विधान कहते हैं। हमने हमेशा देखा ना, बंध चार प्रकार के होते हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, उसको बंध विधान में समझाएंगे। इन चार प्रकार के बंधनों में से सर्वप्रथम बंद का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, वो लिए बराबर करना। ये पहली जो बात है बंद सूत्र पढ़ेंगे। जो सो बंधो नाम सो चौ विहो, नाम बंधो, ठवण बंधो, दव बंधो, भाव बंधो चेती। यानी यहां निक्षेप लगा रहे उस पर। बंध के चार भेद है, नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध और भाव बंध। बंधन नय विभाषण दाय कौन ओ के बंधे इच्छति। अभी पहले निक्षेप की बात करने के पहले कौन से नए कौन से बंध को यानी कौन से निक्षेप को स्वीकार करता है, जैसे हमने हर एक पुस्तक में देखा था वैसे यहां भी बताएंगे। बंध का नय की अपेक्षा विशेष विचार करने पर कौन नय किन बंधों को स्वीकार करता है, प्रश्न चिन्ह लगाना है क्या? ठीक है, ऊपर भी नहीं है। शंका। निक्षेप का निर्देश करने के बाद उसका निरूपण करना था, किंतु वैसा न करके पहले बंधन का नय की अपेक्षा विशेष विचार किस लिए किया जाता है, ये शंका समाधान पहले भी हम देख चुके हैं। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि नय के स्वरूप को समझे बिना भव्यों को निक्षेप का कथन करने पर वह अनुक्त के समान प्राप्त होता है। अनुक्त के समान ने नहीं कहे के अनुसार उसको लगता है, क्योंकि कौन से नए का वो विषय ये ख्याल में नहीं आता। इसलिए अज्ञान का विनाश, वो अलग अलग लिख रहा हूं। अज्ञान का विनाश करने के लिए पहले बंधन का नए की अपेक्षा विशेष विचार किया गया है। यदि वह अज्ञान का विनाश न करे तो उसका और क्या फल हो सकता है? यानी ये तो प्रश्नात्मक समाधान ही है, ये प्रश्न नहीं पूछा है। यानी अज्ञान का नहीं विनाश करे तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, ऐसा शंका। यदि ऐसा है तो पहले बंध का नए की अपेक्षा ही विशेष विचार क्यों नहीं किया? तो पहले नए ही बताने थे ना। समाधान, नहीं, क्योंकि निक्षेप का कथन किए बिना उसे आधार बनाकर नय की अपेक्षा विशेष व्याख्यान करना नहीं बन सकता। यदि हमें नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ऐसे हम नाम ही नहीं लेंगे और नय का विषय बता देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए निक्षेप का निर्देश करने के बाद ही, निर्देश करना यानी कथन करना, उसके नाम बता देना, बंध का नय की अपेक्षा विशेष व्याख्यान किया है। देखो, निरूपण या प्ररूपण यानी विशेष व्याख्यान, और निर्देश यानी बस उसका नाम बताना, उसको निर्देश कहते हैं। नैगम व्यवहार संग्रह सव्य बंधे, नैगम व्यवहार और संग्रह ने सब बंधों को स्वीकार करते हैं। नैगम ने, व्यवहार ने और संग्रह ने सब बंधों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि इनके विषय रूप से ये चारों बंध संभव है। कौन से चारों बंध? हाँ, आप क्या कहते? बंध बंधक। हाँ अशोक भाई, चार कौन से इनके चारों? बहुत अच्छा। नाम बंध, स्थापना बंध, क्योंकि कौन से निक्षेप कौन से नए का विषय ये बात चल रही है ना यहाँ, तो नाम बंध, स्थापना बंध, द्रव्य बंध, भाव बंध, उसके ये चारों बंध। यानी चारों निक्षेप जो हमने देखा ना, नाम, नाम स्थापना आदि। यदि कहा जाए कि शुद्ध संग्रह नय में ये चारों निक्षेप संभव नहीं है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अशुद्ध संग्रह नय की अपेक्षा ये सब निक्षेप उसके विषय बन जाते हैं। ये शुद्ध संग्रह नय, अशुद्ध संग्रह नय क्या है? संग्रह नय यानी इकट्ठा करके बताना, और उसके भेद करना, उसको तो व्यवहार नय नाम है। तो यहाँ मूल में ये चार भेद तो कर दिए ना, फिर भी वो कहते हैं अशुद्ध संग्रह नहीं है, जैसे हमने सत कहने पर सभी द्रव्य उसमें आ गए, परंतु अब जीव द्रव्य कहेंगे तो क्या वो संग्रह नहीं का विषय के व्यवहार नहीं का विषय है? तो द्रव्य है सच, सत की अपेक्षा कहेंगे तो हमने उसमें भेद डाला है, तो व्यवहार नहीं का विषय हो सकता है, परंतु हमने सभी जीवों को जीव रूप से ग्रहण किया, हमारा अभिप्राय क्या है उसमें? संग्रह करने का है। हमें संसारी या मुक्त या वो कितने गुणस्थान वाले क्या है उसकी, इंद्रियों वाले उसकी यहाँ विभाजन नहीं करना है, तो वही जो व्यवहार नहीं का विषय हो सकता है वही दूसरी अपेक्षा से यहाँ अशुद्ध संग्रह नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारा प्रयोजन सभी जीवों को इकट्ठा बताना है, परंतु शुद्ध संग्रह नहीं किसको कहेंगे? कोई भेद ही नहीं, बस सत द्रव्य मात्र ऐसा कहेंगे, तो उसमें जीव द्रव्य एक अलग निकाला ना, हमें छह द्रव्य में से जीव द्रव्य अलग निकाल के बताया, परंतु हमको अलग निकालने का प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन तो सभी जीवों को इकट्ठा बताना है, वैसे यहां लेना। शंका, ये तीनों द्रव्यार्थिक नहीं है, इसलिए इनके विषय रूप से भाव निक्षेप कैसे प्राप्त हो सकता है? भाव निक्षेप में तो हम पर्याय लेते हैं, उसका समाधान नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय की अपेक्षा भाव बंध इनका विषय बन जाता है। व्यंजन पर्याय ने जो अनेक स्थूल पर्याय है बहुत काल तक चलती है उसको व्यंजन पर्याय कहा, उस अपेक्षा से वो यह इसका विषय हो सकता है। उजुसुदो ठवण बंधम नैच्छदि, रुजु सूत्र ने स्थापना बंध को स्वीकार करो, उसको स्वीकार नहीं करता, क का करना, ये भी पहले हमने इस पर बहुत चर्चा की थी गए पुस्तक में, क्योंकि यह न पदार्थों की सदृशता को स्वीकार नहीं करता। यदि कहा जाए कि संकल्पवश एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप हो जाएगा, यानी संकल्प में वो पदार्थ उस रूप ही हो गया है, तो कहते यह बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक खंभे में संकल्पवश तीन लोक के प्रवेश का प्रसंग प्राप्त होता है, यानी खंभे में पूरा तीन लोक उसमें आ गया समा गया ऐसा कहना पड़ेगा, और ऐसा है नहीं, क्योंकि उसमें तीन लोक का सद्भाव नहीं पाया जाता है। रुजु सूत्र है तो वर्तमान में जो है उसको ही स्वीकार करेगा। सद्दनो नामबंधे भाव नामबंधम भावबंधम च इच्छति, ये बंधम वो घ दिख रहा है, ध है मगर वो लाइन में चला गया, सद्दनो नामबंधम भावबंधम च इच्छति, शब्द ने नामबंध और भावबंध को स्वीकार करता है। शंका, इन दोनों नयों में नाम बंध कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि नाम के बिना इच्छित पदार्थ का कथन नहीं किया जा सकता, इस अपेक्षा नाम बंध को इन दोनों नयों के विषय स्वीकार किया गया है। कौन से दोनों नये? वो तो निक्षेप हुए, नए कौन से? शब्द ने और उसके आगे पहले वाला कौन सा? रुजु सूत्र ने, दोनों नयों के नहीं, रुजु सूत्र ने और शब्द ने के। अभी आगे का सूत्र, जो सो नाम बंधो नाम, अभी कौन से नए किसको स्वीकार करता है वो बात बता दी उन्होंने। अब ये जो है निक्षेप, जो हमने नाम स्थापना वगैरह देखे हैं, उसकी बात अभी चलेगी। जो सो नाम बंधो नाम, सो जीवस्य वा अजीवस्य वा जीवाणम वा अजीवाणम, देखो पहले एक वचन लिया अभी अनेक वचन ले रहे हैं, उसके आधार बता रहे हैं ना, किसका नाम है, बंध नाम रखा अपन किसका, तो उसकी बात बता रहे हैं। वह जीवस्य च अजीवस्य च, जीवस्य च अजीवाणम च, जीवाणम च अजीवस्य च, जीवाणम च अजीवाणम च, जस्य नामम कीरदि बंधो ति सवो भक्ति सो सवो नाम बंधो नामा, जिसका नाम हमने बंद रख दिया वो सब नाम बंद हो गया। जो यह नाम बंद है वह इस प्रकार है, एक जीव एक अजीव, बहुत जीव बहुत अजीव, एक जीव और एक अजीव। अभी कॉम्बिनेशन में लिए, एक जीव और बहुत अजीव, बहुत जीव और एक अजीव, तथा बहुत जीव और बहुत अजीव, ये आठ जो होते हैं ना अलग अलग, इनमें से जिसका बंद यह नाम किया जाता है वह सब नाम बंद है। नाम की प्रवृत्ति इन आठों में ही होती है, क्योंकि इनके बाहर अन्य पदार्थ नहीं पाया जाता। जीव और अजीव में सभी आ गए ना, उसी के कॉम्बिनेशन बताएं। शंका, इन आठ में प्रवृत्त हुआ बंध शब्द नाम बंद होता हुआ अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है? ये जो बंध शब्द है, इसका हमने सामने ये प्लास्टिक का क्लिप है, इसका हमने नाम रख दिया बंध, तो इसको तो बंध शब्द सूचित करता है, वो बंध शब्द अपने आप को कैसे प्रकाशित करता है, कैसे सूचित करता है? समाधान, नहीं, क्योंकि सूर्य मणि और चंद्र आदि में स्व और पर के प्रकाशन की योग्यता पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और पर को भी, उसके प्रकाश में अन्य वस्तु भी देखी जाती है, तो दीपक को देखने के लिए हमको कौन सा दीपक लाना है दूसरा, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे शब्द को भी स्वपर प्रकाशक वाचक कहते, प्रकाशक नहीं कहेंगे हम, वाचक, स्वपर वाचक, यानी शब्द है वो स्व को ही बताता है और अन्य पदार्थों को भी बताता है। ये ज्ञान के लिए भी कभी कभी शब्द की उपमा देना, शब्द स्वपर वाचक है और ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। हाँ, शब्द को आशय है कि जैसे सूर्य आदि स्वपर प्रकाशक होते हैं, वैसे नाम शब्द भी, कोई भी शब्द जो हम शब्द उच्चारते हैं, नाम बताते हैं, तो वो शब्द स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य चीज के बताने के लिए हम शब्द का वापर करते हैं, नहीं तो शब्द को जानने के लिए और दूसरा शब्द यूज करना पड़े, ऐसी बात नहीं है। ये शब्द को स्वपर प्रकाशक कहते, पहले हमने द्रव्यनियोग के शास्त्र में भी सुना है, जैसे शब्द स्वपर प्रकाशक है वैसे ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। आगे आठ नंबर का, जो सो ठवण बंधो नाम सो दुवी हो सभाव ठवण, ठवण चाहिए, ठवणा हो गए, सभाव ठवण बंधो चेव असभाव ठवण बंधो चेव। ये दोनों जगह न करना, ना है उसका। स्थापना बंध दो प्रकार का है, सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध। सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध से जुदा कोई तीसरा स्थापना बंध नहीं पाया जाता, इसलिए स्थापना बंध दो प्रकार का ही होता है। शंका, स्थापना बंध किसे कहते हैं? समाधान, अन्य बंध में अन्य बंध की वह यह है, इस प्रकार बुद्धि से स्थापन करना, स्थापना करना स्थापना बंध है। आकृति वाले पदार्थ में सद्भाव स्थापना होती है और आकृति रहित पदार्थ में असद्भाव स्थापना होती है। इसके उदाहरण भी हमने पहले बहुत बार देखे, अब इसको समझाएंगे। जो सो सभाव सभावासभाव ठवणा बंधो, ये क्या है, सब ठवणा हो गया, पर उसमें भी देखना आपने, ठवण ही चाहिए। यहां भी आठ के नीचे भी उन्होंने देखा ना, ऊपर प्राकृत में आठवें सूत्र के नीचे, सभाव असभाव ठवण बंधे हिंतो, या जो सो सद्भाव असद्भाव ठवण बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो। ये जो सद्भाव स्थापना जो है वो उसका निर्देश इस प्रकार है, कट्ठ कम्मेशु वा चित्त कम्मेशु वा पोत्त कम्मेशु वा लिप कम्मेशु वा लेण कम्मेशु वा सेल कम्मेशु वा गिह कम्मेशु वा भित्ति कम्मेशु वा दंत कम्मेशु वा भेंड कम्मेशु वा अखो वा वराड़ो वा जे चामने एवं आदिया सद्भाव असद्भाव ठवणाए ठवी जदि बंधोत्ति सवो सद्भाव असद्भाव ठवण बंधो नाम। ठवणाए है यानी उसमें वो उसमें ये लगाए ना, विभक्ति लगी है ठवणाए ठवी जदि बंधो, उसमें ऐसा लगाए ना, उसमें स्थापना में ऐसा। हिंदी में देखो नीचे से तीसरी लाइन राइट साइड से असद्भाव स्थापना में, तो ये मेन लगाया इसलिए वो ठवणा ये लिखा उन्होंने। हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, जो वह सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, काष्ठ कर्मों में, पोत कर्मों में, लेप्य कर्मों में, लयन कर्मों में, शैल कर्मों में, गृह कर्मों में, भित्ति कर्मों में, दंत कर्मों में, भेंड कर्मों में तथा अक्षया कौड़ी इनको आदि लेकर और दूसरे पदार्थ अभेद रूप से अभेद स्वरूप से सद्भाव स्थापना तथा असद्भाव स्थापना में यह बंध है इस रूप से स्थापित किए जाते हैं, वह सब सद्भाव स्थापना बंध और असद्भाव स्थापना बंध है। इसको भी हमने बहुत बार देखा था, फिर भी यहाँ देखते हैं। हाँ, श्री परिणीत खैर और साग काष्ठ आदि में ये जो लकड़ी होती है ना, तो कौन से वृक्षों की लकड़ी उसके लिए लिखा है, श्री परिणीत खैर के वृक्ष है और साग का वृक्ष है, उसमें चक्रबंध, मुरजबंध, विद्याधर बंध, नागपाश बंध और संसारवास बंध आदि की तदाकार स्थापना करना सद्भाव स्थापना बंध कहलाता है। ये अलग अलग बंधों की उसमें स्थापना कर देना उसको सद्भाव स्थापना बंध क्या, उसके विशिष्ट आकार है तो उसको वहां स्थापित कर देना। इन बंधों की उन श्रीपर्णी आदि काष्ठों में अतदाकार स्थापना करना असद्भाव स्थापना बंध कहलाता है, और उसका जो आकार है निश्चित उसको छोड़कर अन्य आकारों में उसकी स्थापना करना तो उसको असद्भाव स्थापना कहेंगे। चित्रकार रंग विशेषों से जो चित्र बनाते हैं वे चित्र कर्म कहलाते हैं। वस्त्रों में पाण साली और कोसद आदि बुनकरों के द्वारा बुनने रूप क्रिया से जो आकार बनाए जाते हैं ये साड़ियां वगैरह बनाते हैं ना, उसमें हाँ कोई पंछी होते, कोई फल है फूल है उसके आकार बनाते हैं, तो बुनने रूप क्रिया लिखे उसमें। या छिपा उन पर जो आकार बनाते हैं यानी जो हाँ छापते हैं ना, यानी वो ऐसा बनाते हैं कुछ क्या कहते हैं उसको, ठस्सा, मराठी में ठस्सा कहें, वो प्रिंटिंग आते हैं ना ये जयपुर में, हाँ ये तो ऐसे ऐसे करके ऐसा छपा करके वो उसका प्रिंट किया जाता है, पोत कर्म कहलाते हैं। ये वाला जयपुर वाला सारा ये ऐसा ही पोत कर्म होता है। लेप्यकार लेपन कर जो आकार बनाते हैं वे लेप्य कर्म कहलाते हैं। लेप्यकार ने भी वो मिट्टी का कोई लेप देकर आकार बनाते हैं। पत्थर फोड़ा पर्वतों में जो आकार घटित करते हैं वे लयन कर्म कहलाते हैं। पत्थर फोड़ा नाम दिया उनको, जिसको हम लेनी कहते मराठी में, हाँ केव्स। वे ही छिन्न शिलाओं में जो आकार घटित करते हैं वे शैल कर्म कहलाते हैं, यानी जो एक घटित करना घटित हुआ है ना, पर्वतों में बिना वो शिलाएं तोड़कर वहीं के वहीं बनाना उसको लयन कर्म का लयन कर्म। और जो बड़ी बड़ी शिलाएं है उसमें जो बनाए जाए जैसे मूर्ति बनाते हैं या कुछ है, पुतले बनाएंगे और कुछ बनाएंगे, फूल बनाएंगे, कमल बनाएंगे, तो उसको शैल कर्म कहेंगे। मृत्तिका पिंड के द्वारा प्रासादों में जो आकार घटित करते हैं वह गृह कर्म कहलाते हैं। घरों में जो मिट्टी के द्वारा जो बड़े कुछ आकार बनाएंगे उसको गृह कर्म कहते हैं। उसी से दीवालों में जो आकार बनाए जाते हैं वे भित्ति कर्म कहलाते हैं, यानी भित्ति पर लिंब के ऊपर मिट्टी के आकार करके उसके जो कुछ बनाएंगे उसको भित्ति कर्म कहेंगे। हाथी के दांतों में जो आकार बनाए जाते हैं वह दंत कर्म कहलाते हैं। भेंडों से जो आकार बनाए जाते हैं वे भेंड कर्म कहलाते हैं। ये दसों ही कर्म देशामर्शक है। देशामर्शक यानी फॉर एग्जाम्पल थोड़े बताए हैं, अभी जो जितने हैं उतने जान। कोई कागज का कुछ बनाएंगे और कुछ कुछ अलग अलग बनाएंगे, तो जितने में से अभी थर्मोकॉल में से बनाएंगे तो ये सब जान लेना। भेंड यानी वो ऐसी कोई वनस्पति आती है सूखी वनस्पति, उसका छिलका निकाल के अंदर सफेद बहुत लाइट निकलता है ऐसा कुछ, और उसमें से उसमें कारीगरी की जाती है। बहुत दिखने में सफेद दिखता है, जैसे वो सूखा गवत होता है ना अंदर, कैसे ऐसे ऊपर का छिलका निकालो तो अंदर सफेद दिखता है, वैसे वो भेंड नाम की वनस्पति आती है। थर्मोकॉल जैसा ही दिखता है पर उसमें बहुत बारीकी भी ऐसे डिजाइंस बनाते हैं। मैंने देखे भेंड के ऐसे बहुत वर्क देखा है मैंने। इससे पत्र कर्म, भृंग कर्म, तलवत्त यानी आभूषण कर्म ये बनाते ना, रत्नों के कुछ बनाए। अभी रत्नों से निर्मित भी, रत्न में भी प्रतिमाएं बनाते छोटी छोटी। हम देखे मुड़बिद्री में है या श्रवण बेलगोला में है, ये कारंजा में है, तो वो छोटे उसमें भी बनाए उन्होंने। ताली पत्र कर्म, भोज पत्र कर्म, सीने का कर्म और मणि विज्ञान कर्म आदि को ग्रहण करना चाहिए। यानी वो अन्य अन्य जो कुछ बता, अभी धातु में से कुछ बनाएंगे ये सब उसमें ले सकते हैं हम। अभी नए नए कुछ मटेरियल बनेंगे, जैसे भी बच्चों को वो तो प्लास्टिसिन जो लेके देते हैं ना, उसमें से कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, कलर्ड वो क्ले जैसी होती है। इन कर्मों में तदाकार स्वरूप से बंध की स्थापना करना सद्भाव स्थापना बंध है, और अतदाकार रूप से बंध की स्थापना करना असद्भाव स्थापना बंध है। शंका, इनका देशामर्शक स्थापना कैसे जाना जाता है? देशामर्शक पना चाहिए ना, स्थापना क्यों लिखा? एदेसिम देशामसियत्तम, स्थान निकाल देना वहां, देशामर्शक पना चाहिए। यानी ये देशामर्शक है ये कैसे जाना? समाधान, सूत्र में आगे कहे जाने वाले एवं आदि वचन से जाना जाता है, यानी इसी प्रकार लिखा है ना, तो इसी प्रकार में अभी समझ लेना जो कुछ है। अक्ष पासे का नाम है, ये सूत्र में आई थी ना अक्षर वराटक, और वराटक कौड़ी का नाम है। ये दोनों ही वचन असद्भाव स्थापना के सूचक हैं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, सूत्र में अक्षेसु वा वराड़ेसु वा इस प्रकार सप्तम्यंत वचन का निर्देश नहीं किया गया है, इससे जाना जाता है ये दोनों वचन असद्भाव स्थापना के सूचक है। उसके जो विभक्ति लगाई है उसी से पता चलता है असद्भाव स्थापना है। देखो पहले क्या क्या हिंदी में देखो, क्योंकि प्राकृत का व्याकरण तो नहीं समझ में आया ना। सूत्र 9 नंबर का सूत्र पहले क्या कहा था, काष्ट कर्मों में, पोत कर्मों में, लेप्य कर्मों में, वहां में यानी वहां सद्भाव उसमें स्थापना की, उसमें तो सद्भाव असद्भाव दोनों ही की थी, और बाद में अक्षय या कौड़ी इनको दूसरे पदार्थ वगैरह वगैरह वहां उनमें ऐसा नहीं लिखा था। लिखा ना अक्षेसु वा वराड़ेसु वा ऐसा नहीं लिखा है। प्राकृत देखना है तो उसमें भी देखना, देखो प्राकृत में कठ कम्मेशु चित्त कम्मेशु सबके लिए सु लगाया, यानी सप्तमी विभक्ति लगाई, और अखो वराड़ो उसमें अखेसु वराड़े केसु ऐसा नहीं लिखा है, देखो यहाँ लिखा ना अखेसु वराड़ेसु ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखते तो सप्तमी विभक्ति लग जाती उसको, सप्तम्यंत यानी सप्तमी विभक्ति लगाना। जैसे हमने कटोरी में रखा कुछ तो हमने सप्तमी लगाई, तो ऐसे यहाँ नहीं लगाई है, उससे जाना जाता है। इनमें या ए अमा अर्थात अभेद रूप से, स्थापना अर्थात बुद्धि में बंध इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं, इसलिए यह सब स्थापना बंध कहलाता है। शंका, स्थापना शब्द बुद्धि का वाचक है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका धरणी धारणी स्थापना कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये बुद्धि के नाम है। ये बुद्धि के लिए जो अलग अलग नाम है, धरणी धारणी स्थापना कोष्ठा प्रतिष्ठा, इस सूत्र से जाना जाता है। ये कहाँ से लिखा उन्होंने सूत्र? प्रकृति अनुयोगदास सूत्र 40। ये पहले भी उन्होंने ये बातें बताई थी विस्तार से। विशेषार्थ, यहाँ सद्भाव और असद्भाव रूप दोनों प्रकार के स्थापना बंध की चर्चा की गई है। स्थापना एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में होती है, जिसमें स्थापना की जाती है यदि वह तदाकार होता है तो वह सद्भाव स्थापना कहलाती है, यदि अतदाकार होता है तो वह असद्भाव स्थापना कहलाती है। बुद्धि से यह वही वह ही है ऐसा एकत्व स्थापित करके स्थापना की जाती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात आ जाने वाली है। वहां तो लिखा है ना, अभी जैसे हम प्रति यहाँ भगवान है ही नहीं है और मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हो, वैसे गुरुओं की भी स्थापना करो। कोई नग्न है दीक्षा ली है तो उसमें भी भावलिंगी की स्थापना कर दो। अभी उसका क्या उत्तर है वो हम वहां पढ़ेंगे। जो सो दव बंधो नाम सो थप्पो, द्रव्य बंध स्थगित किया जाता है। शंका, किस लिए स्थापित नहीं स्थगित चाहिए? किमठम थप्पो की रदी, किस लिए स्थगित किया जाता है? ये गलती से स्थापित हुआ है उसको स्थगित करो। समाधान, क्योंकि आगे उसका बहुत वर्णन करने वाले हैं, तैयारी रखना कहते हैं। हाँ, स्थगित करना। हाँ, क्योंकि ये द्रव्यबंध थप्पो किया ना, द्रव्यबंध स्थगित किया जाता है तो उस पर प्रश्न किया क्यों स्थगित किया जाता है। अगर स्थापित लिखेंगे तो उसका वर्णन करना पड़ेगा। अभी उसको थप्पो किया है ना, भावबंध को पहले बता रहे हैं। जो सो भावबंधो नाम सो दुविहो, आगमदो भावबंधो चेव नो आगमदो भावबंधो चेव। ये नाम स्थापना द्रव्य भाव की बात चल रही, भावबंध। हमेशा हम द्रव्य की बात पहले देखते हैं ना, फिर भाव की बात करते हैं। अभी यहाँ द्रव्य की बात बाद में करेंगे। भावबंध दो प्रकार का है, आगम भावबंध और नो आगम भावबंध। इस प्रकार भावबंध दो ही प्रकार का होता है, क्योंकि आगम भाव और नो आगम भाव से अतिरिक्त अन्य भाव नहीं पाया जाता। अब उसको समझाएंगे। जो सो आगम दो भावबंधो नाम तस्स इमो निर्देशो, ठिदम जिदम परिजिदम वायणोवगदम सुत्त समम अत्थ समम गंथ समम नाम समम घोष समम जा तत्थ वायणावा पुच्छनावा परिच्छनावा परियठनावा अणुपेहणावा थय थुदी धम्म कहावा जे चामण्य एवं आदिया उवजोगा भावेत्ति कट्टू जावदिया उवजुत्ता भावा सो सवो आगमदो भावबंधो नाम। कल बात आई थी ये। हाँ, उसमें स्वल्पविराम नहीं देते हैं जो कॉमा प्राकृत में, उसके हिंदी अर्थ में अभी लगाएंगे। ये कल बात आई थी ना प्रकृति अनुयोग द्वार के एकदम अंत में उपसंहार के समय, वो भाव वहां लिया था, भाव की बात एकदम लास्ट में ली थी कल जब हम समाप्त कर रहे थे, ये सारे नाम वहां पढ़े थे हमने, ये घोष सम वगैरह नाम समग्रंथ सम। देखो जो आगम भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम और घोष सम, इनके विषय में वाचना पृछना प्रतिच्छना परिवर्तना, यहाँ कॉमा लगाना के परिवर्तना का ही अनुख अर्थ किया उन्होंने, नहीं अनुप्रेक्षणा कॉमा लगा देना, स्तव स्तुति धर्मकथा तथा इनसे लेकर जो अन्य उपयोग है उनमें भाव रूप से जितने उपयुक्त भाव है वे सब आगम भाव बंध है। हम हमेशा कोई आगम निक्षेप, आगम भाव निक्षेप कैसे लगाते हैं, किसी बात पर आगम भाव निक्षेप कैसे लगाते हैं, उस संबंध में जो प्रावृत है उसका जानकार और उसी में उपयोग वाला जीव। तो आगम में ये जो स्थित जीत परिजित वाचनों पर सूत्र वगैरह, ये जो आगम के भेद बताए और उसमें उपयोग लगाता है ने क्या क्या करता है, वाचता है पूछता है प्रतिचना परिवर्तना अनुप्रेक्षणा स्तव स्तुति, ये सब उसमें उपयोग लगाने की बात है, तो ये सब उसमें आ जाते हैं आगम भाव बंध में। देखो नीचे लिखते स्थित जित परिजित वाचनोपगत सूत्र सम अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम और घोष सम, ये नौ प्रकार का आगम है। ये बात पहले भी आ चुकी है पुस्तकों में। शंका, एक आगम के नौ भेद कैसे हो जाते हैं, उसका समाधान, लक्षण के भेद से एक आगम के नौ भेद हो जाते हैं, वह लक्षण कौन सा है। देखो यहाँ फिर कहते हैं उसका समाधान, कहते हैं अवधारण मात्र की स्थित संज्ञा है। अवधारण के अर्थ क्या होता है बस जानना, अवधारण करना, जिसने 12 ही अंगों को अवधारित कर लिया है वह साधु स्थित श्रुत ज्ञान है। वो जीव को कहा है, आगम भाव जो संज्ञा देते हैं, आगम भाव श्रुत लेना। देखो हमने जब श्रुत ज्ञान पर ये सारे लगाए थे ना, भाव श्रुत द्रव्य श्रुत, आपको याद होगा तो अभी, तो उसमें ये सारी बातें आई थी। आगम भाव श्रुत किसको कहेंगे, श्रुत ज्ञानी जीव को, जो उपयोग वाला है। तो ये जो जिसने 12 अंगों को अवधारित कर लिया है, जान लिया है या धारण किया, ऐसा कहेंगे ना, वह साधु स्थित श्रुत ज्ञान है। इसकी स्थित संज्ञा क्यों है, समाधान, अन्यत्र इसका संचार नहीं होता, इससे उसकी स्थित संज्ञा है। शंका, ऐसा भी क्यों, उसका समाधान, क्योंकि अन्य के साधकतम रूप से करण होने की शक्ति नहीं पाई जाती है। ये साधु को लिया यहां स्थित में 12 अंग वाले को, जो जाने हुए अर्थ को धीरे धीरे विचार कर कहने के लिए समर्थ होता है वह जित नाम का श्रुत ज्ञान है। और जो 12 अंगों को जानकर बिना स्खलन के जाने हुए अर्थ को कहने के लिए समर्थ होता है वह परिजित नाम का श्रुत ज्ञान है। पहले वाला धीरे धीरे विचार कर फिर कहता है, और एक है वो बस स्खलन के बिना फटाफट बोल देता है। हमने कोई चीज याद की है तो कभी कभी के रुक रुक के याद कर कर के बताते हैं ना, और अच्छी तरह से याद है तो फटाफट पूरे नाम बोल देते हैं। ये दोनों ही आगम अन्य को ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इनमें दक्षता नहीं पाई जाती। जो 12 अंगों को जानकर अन्य के लिए उनका व्याख्यान करने में समर्थ है, वह वाचनोपगत नाम का आगम है। वाचना किसे कहते हैं? शिष्यों को पढ़ाना, इसका नाम वाचना है। हम वाचना यानी बस आंखें घुमाना वाचना है। ये शास्त्र भी हम कैसे पढ़ते हैं ना, पढ़ डाला, उसको भी यहाँ वाचना नहीं कहे, वाचन। गुजराती में बराबर शब्द है, वाचन कहते हैं ना प्रवचन को, वाचन वैसा वाचना। सिखाने को वाचन नहीं करते, वाचना कहते। और वाचन यानी पढ़ना, स्वयं पढ़ना। मराठी में वाचन कहते, वाचन यानी अपने आप पढ़ना, वो वाचन, मैंने वाचन किया इसका, इस ग्रंथ का मैंने वाचन किया। उन तो पढ़ाने के लिए वाचना ऐसा शब्द गुजराती में वैसे मराठी में नहीं है। हाँ, उसी को वाचना कहते। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ तो वाचना जो है वो शिष्यों के पढ़ाने के अर्थ में ही आता है। सूत्र का अर्थ श्रुत केवली है। सूत्र समवात आई ना, उसके समान जो श्रुत ज्ञान होता है वह सूत्र सम श्रुत ज्ञान है। अथवा सूत्र का अर्थ 12 प्रकार का अंगरूप शब्दागम है, द्वादशांग जिसको कहते हैं। जिसने अवधारण किया है वो साधु स्थित है। और यहाँ जो 12 प्रकार का अंगरूप शब्दागम, उसने अवधारण किया, और यहाँ क्या कहते, देखो, आचार्य के उपदेश बिना सूत्र से ही जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह सूत्र सम श्रुत ज्ञान है। ये थोड़ा डिफरेंस है उसमें, बिना उपदेश के। अर्थ गणधर देव का नाम है, क्योंकि वे आगम सूत्र के बिना सकल श्रुत ज्ञान रूप पर्याय से परिणत रहते हैं। सूत्र उन्होंने नहीं सुने, उन्होंने तो ओमकार ध्वनि सुनी है, ख्याल है ना, सूत्र तो उन्होंने बनाए हैं। उनको किसी ने आगम सूत्र सुनाए नहीं है, परंतु ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि उसके द्वारा वो सूत्रों का ज्ञान उन्हें हो जाता है। उस पर्याय रूप से सकल श्रुत ज्ञान रूप पर्याय से परिणत होते, यानी पूरे के पूरा श्रुत ज्ञान उनके ज्ञान के पर्याय में वो सहज रूप से प्रतिभासित होता है। इसके समान, इनके समान जो श्रुत ज्ञान होता है वह अर्थ सम श्रुत ज्ञान है। अथवा अर्थ बीज पद को कहते हैं। इससे जो समस्त श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह ग्रंथ सम श्रुत ज्ञान है। एक बीज पद से पूरा श्रुत ज्ञान उत्पन्न होना उसको ग्रंथ सम कहते हैं। आचार्यों के उपदेश को ग्रंथ कहते हैं। इसके समान जो श्रुत ज्ञान होता है वह ग्रंथ सम श्रुत ज्ञान है। हाँ, मगर वो बीज पद के द्वारा, एक्चुअली उसका नाम अलग चाहिए, वहां बीज पद के द्वारा होता है उपनाम संशोधन में, अर्थ सम चाहिए, वो अर्थ सम हो गया। इसमें हमने मूल में देखते, देखो, परिचित वाचनोपद सूत्र में अर्थ सम ग्रंथ सम नाम सम घोष सम। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है? अर्थ सम का है, अथो बीज पदम तत्तो उपन्नम शैल सुदनानम अर्थ समम, ऊपर नीचे से पांचवी लाइन राइट साइड में। देखो ये मैं फिर दोबारा बताना चाहती हूँ। अर्थ सम दो बार लिखा उन्होंने ऊपर, नीचे से लाइन पढ़ाती हूँ, 1 2 3 4 5 छठी लाइन पहले लेना, अथो गणधर देवो, मिला? गणधर देव को अर्थ कहते, आगम सुत्तेन विना सयल सुदनान पज्जायन परिणत्तादो तेन समम सुदनानम अथ समम। यानी उनका जो अर्थ है वो आगम के बिना, यानी आगम सूत्र के बिना उनका होता है, उनके समान जिसका ज्ञान है उसको अर्थसम कहेंगे। अथवा अभी अर्थसम का ही दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं, अथो बीज पदम, बीज पद को भी अर्थ कहते हैं। तत्व उपन्नम सयल सुदनानम अथ समम। अब नीचे पढ़ना, नीचे पैराग्राफ ऊपर से पांचवी लाइन, अथवा अर्थ बीज पद को कहते हैं, इससे जो समस्त श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है वह अर्थ सम चाहिए। ग्रंथ सम लिखा है ना, कहाँ करेक्शन करना समझ में आया? नीचे की छठी लाइन। अब उसके आगे ग्रंथ सम को लिखा है कि आचार्यों के उपदेश को ग्रंथ कहते हैं, और उसके समान जो श्रुत ज्ञान होता है वह ग्रंथ सम श्रुत ज्ञान है। आचार्य के पादमूल में 12 अंगरूप शब्दागम को सुनकर जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है, उपदेश के अनुसार होता है ना, यानी आगम को सुनने के बाद होता है, वह ग्रंथ सम श्रुत ज्ञान है। पहले अर्थ सम में क्या लिया था, बीज बुद्धि से उत्पन्न होता है या गणधर के जैसा जो उत्पन्न होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आचार्य के पादमूल में 12 अंगरूप शब्दागम को सुनकर जिसके कथन करने योग्य अर्थ को विषय करने वाला ही श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह नाम सम श्रुत ज्ञान है। यानी श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है परंतु कथन करने योग्य अर्थ को विषय करने वाला, उसमें से थोड़े को विषय किया है उसने, वो नाम सम हुआ। 12 अंगरूप शब्दागम को सुनने वाले, जिसके सुने हुए अर्थ से संबंध रखने वाले पदार्थ को विषय करने वाला श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह घोष सम श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार 9 प्रकार के श्रुत ज्ञान का कथन किया। अब ये जो 9 प्रकार के श्रुत ज्ञान है उसके बारे में, इनके विषय में वाचना, पृच्छना, प्रतिच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति और धर्मकथा के भेद से 8 प्रकार का उपयोग होता है। ऊपर ज्ञान जो है वो 9 प्रकार के लिए, 9 प्रकार के श्रुत ज्ञान लिए, और यहाँ 8 प्रकार का उपयोग लिया। उनमें से अन्य के लिए व्याख्यान करना वाचना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, उसमें अनिश्चित, अनिश्चित है, अनिश्चित चाहिए ना, अनिश्चित, अनिच्छिद ठाणम, अनिश्चित करना, अनिश्चित अर्थ को समझने के लिए प्रश्न करना, पूछना है, यानी जिसका अर्थ ख्याल में नहीं आया और उसके लिए प्रश्न पूछना, वो पूछना है। आचार्य जिन अर्थों का कथन कर रहे हो उनका सुनना, प्रतिच्छना है। जाने हुए अर्थ का हृदय से पुनः पुनः विचार करना, परिवर्तना है। सूत्र के अर्थ का श्रुत के अनुसार चिंतन करना, अनुप्रेक्षणा है। समस्त श्रुत ज्ञान को विषय करने वाला उपयोग स्तव कहलाता है। और एक अंग या एक पूर्व को विषय करने वाला उपयोग स्तुति कहलाता है। तथा वस्तु और अनुयोग द्वारा आदि को विषय करने वाला उपयोग धर्मकथा कहलाता है। ये वस्तु और अनुयोग द्वार क्या है हमने देखा था ना, श्रुत ज्ञान के हमने भेद देखे है ना, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात समास, संघात समास, अनुयोग, प्रतिपत्ति, ये सारे देखे ना हमने। तो उसमें जो वस्तु नाम का जो शुद्ध ज्ञान है या अनुयोग द्वार जो है, आदि में अन्य भी समझना, उसको धर्म कथा कहलाते हैं। इत्यादि जितने उपयोग है उनमें यह भाव है ऐसा समझकर जितने उपयुक्त भाव होते हैं वह सब आगम भाव बंध है। ये उपयोग वाला लेना उसमें। अब नो आगम की बात करेंगे। जो सो नो आगम दो भाव बंधो नाम सो दुवि हो, जीव भाव बंधो चेव अजीव भाव बंधो चेव। नो आगम भाव बंध दो प्रकार का है, जीव भाव बंध और अजीव भाव बंध। इस तरह दो प्रकार का ही नो आगम भाव बंध है, क्योंकि जीव और अजीव इन दो भेदों के सिवा नो आगम भाव बंध नहीं पाया जाता। जीव और अजीव में सब चीजें आ गई ना, सब वस्तुएं उसमें आ जाती है। जो सो जीव भाव बंधो नाम सो तिवि हो, विवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव तदुभय पच्चयो जीव भाव बंधो चेव। जीव भाव बंध तीन प्रकार का है, विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध, अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध और तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध। इस प्रकार तीन प्रकार का ही जीव भाव बंध है, क्योंकि अन्य चौथा जीव भाव नहीं पाया जाता। वो जी के ऊपर बिंदी आ गई। कर्मों के उदय और उदीर्णा को विपाक कहते हैं। यानी उदय हो या उदीर्णा होकर भी उदय ही होता है ना, उदीर्णा भी उसी को कहते हैं। और विपाक जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है, कारण को प्रत्यय कहते हैं। कल आपने जो पूछा था ना प्रत्यय, वो प्रतीति के अर्थ में आया था, वो बात अलग है। प्रत्यय जब आता है ये द्रव्य प्रत्यय, तो कारण के रूप में आता है प्रत्यय। देखो क्या कहते हैं, कर्मों के उदय और उदीर्णा को विपाक कहते हैं। और विपाक जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है, यानी कर्म के उदय और उदीर्णा के कारण जो भाव होते हैं, उसे विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध कहते हैं। कर्मों के उदय और उदीर्णा के अभाव को अविपाक कहते हैं। कर्मों के उपशम और क्षय को अविपाक कहते हैं। उदय का अभाव यानी क्या है, या तो उपशम है या क्षय है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पहले हमने उदय उदीर्णा को विपाक कहा था, उपशम और क्षय को यहाँ अविपाक कहा है। अविपाक जिस भाव का प्रत्यय अर्थात कारण है, उसे अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध कहते हैं। कर्मों के उदय और उदीर्णा से तथा इनके उपशम से जो भाव उत्पन्न होता है, उदय उदीर्णा भी है और उपशम भी है, उसे तदुभय प्रत्येक जीव भाव बंध कहते हैं। ऐसा कोई होता है कि उदय भी है और उपशम भी है? हाँ, क्षय उपशम भाव। विशेषांत, यहाँ जीव भाव बंध के तीन भेदों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। विपाक का अर्थ उदय और उदीर्णा है, अविपाक का अर्थ उपशम और क्षय है, तथा तदुभय का अर्थ क्षोपशम है। देखो नीचे लिखा है, इसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय और उदीर्णा रहती है तथा सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय रहता है। क्षोपशम में क्या होता है, उदय और उदीर्णा देशघाती स्पर्धकों की होती है, और उसकी प्रकृति के जो सर्वघाती स्पर्धक है वो सत्ता में पड़े रहते, उसी को वहां उपशम कहा है। क्षोपशम शब्द द्वारा अनुदय ही कहा गया है, क्षय अर्थात अनुदय ही उपशम, ऐसी उसकी उत्पत्ति है। देखिए क्षयोपशम शब्द द्वारा क्या, क्षय अर्थात अनुदय, वही उपशम, ऐसी उसकी उत्पत्ति है। तदुभय में विपाक और अविपाक दोनों का ग्रहण हो जाता है, किंतु क्षोपशम शब्द द्वारा उदय और उदीर्ण अविवक्षित रहते हैं, अभिप्राय दोनों का एक है। अब इसको समझाएंगे। कौन कौन से तीन देखे हमने? विपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध, अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध और तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बंध। अब यहां सूत्र पढ़ते 15 नंबर का। जो सो विवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्य इमो निर्देशो देवेति। एक्चुअली यहां थोड़ा गैप चाहिए निर्देशों के बाद में, या डैश दे तो भी चलेगा। देवेत्ति वा मनुष्येत्ति वा तिरिखेत्ति वा नेरयेत्ति वा इत्थि वेदेत्ति वा पुरुष वेदोत्ति वा नौसे वेदेत्ति वा कोह वेदेत्ति वा मान वेदेत्ति वा माय वेदेत्ति वा लोह वेदेत्ति वा राग वेदेत्ति वा दोष वेदेत्ति वा मोह वेदेत्ति वा किन्न लेसेत्ति वा नील लेसेत्ति वा काऊ लेसेत्ति वा तेऊ लेसेत्ति वा पम्म लेसेत्ति वा सुक्क लेसेत्ति वा असंजदेत्ति वा अविरदेत्ति वा अन्नानेत्ति वा मिच्छादिट्ठित्ति वा जे चामण्ये। ये किसके नाम है कुछ ख्याल आता है? हाँ, औदयिक भाव बता रहे हैं यहाँ पर। चार गति तीन वेद, हाँ ये थोड़े डिफरेंट है। देखो, एवं आदिया कमोदय पच्चया उदय विवाग निपन्ना भावा सो सवो विवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम। हिंदी में पढ़ेंगे और क्लियर होगा। देखो, जो विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है। देव भाव, मनुष्य भाव, तिर्यंच भाव, नारक भाव, ये गति भाव हो गए। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, क्रोध वेद, मान वेद, माया वेद, लोभ वेद, राग वेद, दोष वेद, मोह वेद, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा, असंयत भाव, अविरत भाव, ये उन्होंने दोनों ही लिए। हम 21 औदयिक देखते हैं ना, तो उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह तो देखते हैं, परंतु यहाँ राग, द्वेष, मोह को भी अलग से लिया। असंयत लेते तो यहाँ अविरत भाव भी अलग से लिया है, अज्ञान भाव और मिथ्या दृष्टि भाव, तथा कौन सा नहीं लिया? असिद्धत्व। हाँ, इसी प्रकार कर्मोदय प्रत्येक उदय विपाक से उत्पन्न हुए और जितने भाव हैं वे सब विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। हाँ, हम 21 कहते हैं ना, हम 21 कहते वहां असिद्धत्व को लेते हैं और यहाँ असिद्धत्व को नहीं लिया है, परंतु राग, द्वेष, मोह लिया है और ये अविरत लिया है। असंयत, हम असंयत लेते, असंयत अज्ञान मिथ्यात्व वगैरह लेते, हाँ अदर्शन लेते। देखो यहाँ पढ़ेंगे पहले। देवगति नाम कर्म के उदय से जो अनिमा आदि गुणों को प्राप्त करता है वह देव भाव है। गति नाम कर्म के उदय में जो गति औदयिक भाव होता है ना, उसकी बात है यहाँ पर। भाव है ना, औदयिक भाव की बात है। गति नाम कर्म से गति औदयिक भाव होता है। जो मनुष्य है तो मनुष्य जैसा बर्ताव करता है, और जो तिर्यंच है, पशु है, वो उस जैसे, उस जो पर्याय में है वैसे उसके बिहेवियर है, आचरण जो है। जैसे मनुष्य है तो कुटुंब में रहेगा, पका के खाना खाएगा, कपड़े पहनाएगा। अब तिर्यंच है वो तो मुंह से खाना खाए, जो बातें हैं, कच्चा ऐसा ही खा लेगा। ये उसके अपने गति योग्य जो भाव होते हैं, इन भावों का ये विस्तार से वर्णन भाव दीपिका में है। ये देव भाव है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से अनिमा आदि गुणों से रहित मनुष्य भाव होता है। तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच भाव होता है। नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है। स्त्री वेद कर्म के उदय से स्त्री वेद रूप भाव होता है। पुरुष वेद भाव विपाक प्रत्येक है, क्योंकि वह पुरुष वेद के उदय से उत्पन्न होता है। नपुसक वेद भाव विपाक प्रत्येक है, क्योंकि वह नपुसक वेद कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। हाँ, अणिमा वगैरह वृद्धि है ना, महिमा है, लघिमा, गरुमा, वो देव भाव में लेना। क्रोध, मान, माया और लोभ ये भाव भी विपाक प्रत्येक होते हैं, क्योंकि ये भाव क्रोध, मान, माया और लोभ रूप द्रव्य कर्मों के विपाक से उत्पन्न होते हैं। देखो, राग द्वेष से छुटकारा करना है तो उनके विपाक में उत्पन्न होते हैं। और कल क्या बात आई थी समय सार में, ये जो बाह्य संयोग है वो राग का फल है। क्यों? क्योंकि बीच में कर्म भी है ना, राग के कारण कर्म बंधे, कर्म के कारण ये सारे बाह्य संयोगों की प्राप्ति हुई। तो यहाँ भी क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्यों? ये पुराने कर्मों के उदय में हो रहे हैं। तो पुराने कर्मों के उदय में राग द्वेष हो रहे हैं, और राग द्वेष के कारण नए कर्म बन रहे हैं, और उसके कारण और भी बातें बन रही हैं। तो इससे मार्ग क्या है छूटने का? ये ना राग को अपना मानो और ना कर्म को ही अपना मानो। राग भी विपाक प्रत्येक होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति माया, लोभ, हास्य, रति और तीन वेद रूप द्रव्य कर्मों के विपाक से होती है। अब इसमें राग और द्वेष अलग से बता रहे। हमने देखा था ना, राग में किस किस को लेना है, कषायों के दो भेद करेंगे, क्रोध, मान, वो द्वेष में चले जाएंगे, माया और लोभ राग में है, और नौ कषायों को भी विभाजित करना है। तो हास्य, रति और तीन वेद, ये सब राग में आते हैं। दोष भी विपाक, दोष कहा यहाँ, द्वेष, दोष आया है वहां पर, ठीक है, ऊपर क्या 200 लिखा है ना, विभाग 25। दोष भी विपाक प्रत्येक होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा रूप द्रव्य कर्म के विपाक से होती है। पांच प्रकार का मिथ्यात्व, वो म दिख रहा है, मिथ्यात्व करना। तो मोह किसको कहना, तो मिथ्यात्व को कहते हैं। तो उसमें पांच प्रकार का मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सासादन सम्यक्त्व मोह कहलाता है। दोनों को लिए, पहले दूसरे गुणस्थान वाले को। वह भी विपाक प्रत्येक होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, न के ऊपर बिंदी लगाना, द्रव्य कर्म के उदय से होती है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेशा भी विपाक प्रत्येक होती है, क्योंकि छह लेशाओं की उत्पत्ति अघाती कर्मों में से तत्प्रायोग्य द्रव्य कर्म के उदय से और कषाय के उदय से होती है। हाँ, ये प्रश्न ऐसा है इनका कि छह लेशाओं की उत्पत्ति आघाती कर्म के उदय से कैसी होती है। हाँ, तो द्रव्य दो प्रकार से लेना, एक तो योग लेशा कहना किसे, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। तो योग क्यों होता है? हाँ, मन, वचन, काय, तीनों ही तो जड़ है। हाँ, पर अभी अभी कोई जीव मरकर आया ना, उसको मन है ना वचन है ना काया है, तो उसको योग क्यों हो रहा है? किसका स्वभाव? आत्मा का स्वभाव हो जाता है तो सिद्धों में भी होना चाहिए। तो हाँ, शरीर नाम कर्म के उदय से योग होता है। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय है, अवतारिक शरीर नाम कर्म का उदय, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय, तो उसके उदय में जीवों में वो कुछ ऐसे शक्ति हुई और फिर उसने वो मन के वचन के काय के परमाणुओं का अवलंबन लिया, तो वहां पर उसके आत्म प्रदेशों की चंचलता हुई, तो उसको योग कहा। ये तो तत् प्रायोग्य द्रव्य कर्म कहा ना, शरीर नाम कर्म ऐसे साधारण हम लिख सकते हैं उसको, शरीर नाम कर्म। असंयत भाव भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि वह संयम का घात करने वाले कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है। अविरत भाव भी विपाक प्रत्येक है क्योंकि यह देश विरति और सकल विरति के घातक कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है। अब शंका, हमारी शंका, और शंकाकार पूछ रहे संयम और विरति में क्या भेद है। समितियों के साथ महाव्रत और अणुव्रत संयम कहलाते हैं और समितियों के बिना महाव्रत और अनुव्रत विरति कहलाते हैं। ओहो, समितियों के बिना महाव्रत अनुव्रत विरति कहलाते हैं, परंतु ये समितियों के बिना महाव्रत कैसे हो गए? ये पांच, हाँ, समितियों के साथ यानी वो मुनियों के होते, समितियों के साथ वाले महाव्रत है वो मुनियों के होते, वो संयम कहा। अभी ऐसा हो सकता है कि क्या वो पक्का बताना, नीचे कुछ लिखा है तो देखेंगे हम, वहां भी कुछ नहीं लिखा है। विशेषार्थ में देखेंगे हम। देखो, यही इन दोनों में भेद है। अज्ञान भाव भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि यह मिथ्यात्व के उदय से अथवा ज्ञानावरण के उदय से उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व भी विपाक प्रत्येक होता है क्योंकि यह मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्मोदय प्रत्येक, उदय विपाक निष्पन्न और जितने भाव होते हैं वे सब विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध कहलाते हैं, और जितने हैं वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए उन्होंने। विशेषण कौन सा? अज्ञान। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, अज्ञान भाव विपाक प्रत्येक क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से अथवा ज्ञानावरण के उदय से। जैसे औदयिक अज्ञान जो हम लेते हैं ना, औदयिक अज्ञान किसको कहना है? जैसे अभी हमारे अवधिक ज्ञान है कि नहीं है? अवधिक ज्ञान है आपके प्रकट? नहीं है, तो वो क्या है आपका? औदयिक अज्ञान है ना, केवल ज्ञान नहीं है हमको, उस संबंधी हमारा अज्ञान है। या इसे चार ज्ञान, ये क्षोभ भाव में घटाते ना, चार ज्ञान और तीन कुज्ञान, और यहाँ हम अज्ञान के रूप में भी उसको ले सकते हैं। कुज्ञान को अज्ञान अगर कहेंगे तो मिथ्यात्व के उदय में है। कुज्ञान को जहाँ अज्ञान कहने में आता है वह मिथ्यात्व का उदय है, और जहाँ वो क्षोभ ज्ञान यानी कर्म के उदय के कारण जो अज्ञान है वह औदयिक अज्ञान होता है। विशेषार्थ, प्रकृत में प्रत्यय शब्द निमित्तवाची है, कारण कहा ना उसको, वो कौन सा कारण है, वो निमित्त कारण है, निमित्तवाची है। यहाँ देव भाव, मनुष्य भाव आदि जितने भाव गिनाए हैं, ये सब विवक्षित कर्म के उदय और उदीर्णा के निमित्त से होते हैं, इसलिए इन्हें विपाक प्रत्येक जीव भाव बंध कहा है। जहाँ ये कुल 24 भाव गिनाए हैं, जबकि तत्वार्थ सूत्र में कुल 21 भाव ही गिनाए हैं। ये बात आई ना, हम हमेशा 21 भाव गिनते हैं। तत्वार्थ सूत्र में गिनाए गए भावों में से असिद्धत्व भाव यहाँ नहीं गिनाया है, और यहाँ राग, द्वेष, मोह और अविरति ये 4 भाव अतिरिक्त गिनाए हैं, इन इन एडिशन। इनमें से यद्यपि अविरति भाव का सामान्यतः असंयत भाव में अंतर्भाव किया जा सकता है, पर शेष 3 भावों के गिनाने में विशिष्ट दृष्टिकोण की प्रतीति होती है। शेष 3 भाव ने राग, द्वेष और मोह। 9 कषायों के 9 भेद हैं, उनमें से रति आदि के उदय से होने वाले भावों का तत्वार सूत्र में दर्शन नहीं होता, जबकि यहाँ इन भावों को राग और दोष में अंतर्भाव हो जाता है। दर्शन नहीं होता है ने, वहां उसके नाम नहीं गिनाए अलग से। इसी प्रकार सासाधन भाव और सम्यक मिथ्यात्व भाव की परिगणना भी तत्वार सूत्र में नहीं की गई है, जबकि यहाँ इनका अंतर्भाव मोह में हो जाता है। एक बात अवश्य है, यहाँ असिद्धत्व भाव नहीं गिनाया है, पर इसके साथ यहाँ इसी प्रकार और दूसरे भावों के ग्रहण करने की सूचना अवश्य की गई है, यानी और जितने हो उतने वो बता दिए ना, तो जितने घटित होते उतने सब हो जाएंगे, इसलिए कोई हानि नहीं है। आशय यह है कि यहाँ औदयिक भावों का विचार करते समय उस दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिससे प्रायः सभी भावों का ग्रहण हो जाता है। ये विपाक प्रत्यय के औदयिक भावों की बात उन्होंने बताई। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो सो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम सो दुविहो उवसमियो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव खयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो चेव। अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध 2 प्रकार का है, औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध और क्षायिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध। अविपाक यानी अनुदय है ना, अनुदय किस लिए है, उपशम के कारण या क्षय के कारण। इस तरह 2 प्रकार का ही अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध होता है। शंका, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व आदि जीव भाव पारिणामिक भी है, उनका यहाँ क्यों कथन नहीं किया, वो पारिणामिक भावों की यहाँ चर्चा क्यों नहीं की। समाधान, कहते हैं आयु आदि प्राणों का धारण करना जीवन है, वह अयोगी के अंतिम समय से आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि सिद्धों के प्राणों के कारणभूत 8 कर्मों का अभाव है, इसलिए सिद्ध जीव नहीं है, अधिक से अधिक वे जीवित पूर्वक कहे जा सकते हैं। ये जीवत्व पारिणामिक भाव कहा ना, तो जीना किसको कहा, आयु आदि प्राणों का धारण करना उसको जीव कहा, तो सिद्ध जीव नहीं कह दिया। यानी वो जीव का लक्षण यहाँ जुदा बताया। तो सिद्धों के जीवत्व क्यों नहीं स्वीकार किया गया, नहीं क्योंकि सिद्धों में जीवत्व उपचार से है और उपचार को सत्य मानना ठीक नहीं है। सिद्धों में प्राणों का अभाव अन्यथा बन नहीं सकता, इससे मालूम पड़ता है कि जीवत्व पारिणामिक नहीं है, किंतु वह कर्म के विपाक से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अविनाभावी होता है वह उसका है, ऐसा कार्य कारण भाव के ज्ञाता कहते हैं। यानी वो आयु कर्म के उदय में ही उसका जीवन चलता है, तो वो उसका है कहते हैं, जीव का नहीं। हाँ, द्रव्य प्राण को लिया और उसके कारण जो जीना है जीव का, हम तो भाव प्राण से जीव हमेशा ही जीता है, उसकी बात यहाँ नहीं उठाई, द्रव्य प्राणों की उठाई है। इसलिए जीव भाव औदयिक है यह सिद्ध होता है। देखो जीवत्व भाव को यहाँ औदयिक सिद्ध कर रहे हैं, आयु कर्म के उदय में वो जो जीवन चलता है उसकी अपेक्षा से। तत्वार सूत्र में जीवत्व को जो पारिणामिक कहा है वह प्राणों को धारण करने की अपेक्षा नहीं कहा है, किंतु चैतन्य गुण की अपेक्षा से वहां वैसा कथन किया है। हम देखते हैं ना भाव प्राणों से जो जीता है, ऐसा हम हमेशा कहते हैं उसमें, इसलिए वह कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी वहां जीवत्व को भी औदयिक घटाया हूं। एक किस अपेक्षा से कहां क्या कथन आता है उसको समझना बराबर, जीवत्व भी औदयिक भाव का। अब आगे पढ़ेंगे शंका। तत्वार सूत्र में इन्हें पारिणामिक कहा है, नहीं कुछ रह गया, एक मिनट एक पैराग्राफ। चार अघाती कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ असिद्ध भाव है वह दो प्रकार का है। दो प्रकार का कहो, देखो जो अरिहंत भगवान है उनमें भी वो असिद्धत्व भाव है ना, अभी उसकी चर्चा यहाँ करें तो वह दो प्रकार का है, अनादि अनंत और अनादि शांत। इनमें से जिनके असिद्ध भाव अनादि अनंत है वे अभव्य जीव हैं, और जिनके दूसरे प्रकार से है जो अनादि शांत हैं वे भव्य जीव हैं। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व ये भी विपाक प्रत्येक ही है। हाँ, देखो आपको ये समझना है, ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, सिद्धों में प्राणों का अभाव अन्यथा नहीं बन सकता, इससे मालूम पड़ता है कि जीवत्व पारिणामिक नहीं है किंतु वह कर्म के विपाक से उत्पन्न होता है। इसके लिए अभी कारण क्या बताते हैं, जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अविनाभावी होता है, यानी जिसके बिना जो नहीं होता उसको उसका कहने में आता है। अब यहाँ बात किसकी चल रही है, जीवत्व की। तो ये जो प्राणों के द्वारा जीना जो है वो क्यों उत्पन्न होता है, अविनाभावी किसके, आयु कर्म के साथ चल रहे हैं ना वो, तो आयु कर्म के उदय के बिना इसका सद्भाव नहीं होता और उसका अभाव है तो ये भी नहीं होता। यानी उसका सद्भाव यानी होना भी उसके साथ अविनाभावी है और नहीं होना उसके नहीं होने के अविनाभावी है। आयु कर्म जब नहीं रहता तो यहाँ प्राणों का भी, 10 प्राणों का भी नहीं रहता है, वो प्राण भी नहीं रहते उसके, इसलिए उसका सद्भाव भी अविनाभावी है। देखो जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अविनाभावी है वह उसका है, यानी जो जिस कारण के बिना वो कार्य उस कारण के बिना नहीं होता और वो कारण में कारण होने पर वो होता ही है, ऐसे दोनों लेना, इसलिए उसको उसी का कहने में आता है। अब हम यहाँ नीचे पढ़ रहे थे, अभव्य जीवों में असिद्ध भाव अनादि अनंत है और भव्य जीवों में असिद्ध भाव अनादि शांत है, तो वहां भी अनादि शांत है वो कर्मों की अपेक्षा आती है। और अनादि अनंत भी क्यों है, असिद्धत्व भाव अनादि अनंत क्यों है, क्योंकि उनके कर्म तो कभी यानी छूटने वाले ही नहीं है, इसलिए इस तरह से जो ये अपेक्षा आती है, इसलिए यहाँ भव्यत्व अभव्यत्व को भी औदयिक सिद्ध कर रहे हैं। वो विपाक प्रत्येक है ये बात यहाँ सिद्ध करते हैं। अब कहते हैं शंकाकार कहता है, तत्वार सूत्र में इन्हें पारिणामिक कहा है, इसलिए इस कथन का उसके साथ विरोध कैसे नहीं होगा? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि असिद्धत्व का अनादि अनंतपना असिद्धत्व पर घटा है और अनादि शांतपना निष्कारण है यह समझकर उन्हें वहां पारिणामिक स्वीकार किया गया। निष्कारण कारण के बिना भव्यत्व और अभव्यत्व, किसी कर्म के उदय में वो भव्य नहीं हुआ है ये बात बताना चाहते हैं, इसलिए वहां उसको पारिणामिक स्वीकार किया गया है। अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। जोसो ओवसमयो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नाम तस्य इमे निर्देशो। उसमें से जो औपशमिक वाले हैं, पहले कौन से सामान्य बात की ना, दो प्रकार का है कहा, औपशमिक और क्षायिक। अब औपशमिक जो है उसका निर्देश बता रहे, से वसंत कोहे वसंत माणे वसंत माए वसंत लोहे वसंत रागे वसंत दोसे वसंत मोहे वसंत कसाय वीयराय छदुमत्थे व समयम सम्मतम व समयम चारित्तम जे चामन्ने एवं आदिया उवसमिया भावा सो सवो उवसमियो अविवाग पच्चयो जीव भाव बंधो नामा। जो औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है उसका निर्देश इस प्रकार है, उपशांत क्रोध ध करना बराबर, उपशांत मान, उपशांत माया, उपशांत लोभ, उपशांत राग, उपशांत दोष, उपशांत मोह, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, तथा इनसे लेकर और जितने औपशमिक भाव है वह सब औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है। अनिवृत्तिकरण में क्रोध के उपशम से जो भाव होता है यह कौन सा अनिवृत्तिकरण होगा? उपशम श्रेणी वाला। शपक श्रेणी में तो उसका क्षय होता है, तो क्रोध को अकेला अलग क्यों लिया? पहले क्रोध को उपशम आता है, जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध के उपशम से उत्पन्न होता है। दोनों को लिया हो, द्रव्य को देने वह प्रकृति, कर्म की प्रकृति तो उपशमित है और यहाँ जीव के भाव में भी उसका उदय नहीं है। उपशांतमान जीव के जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्यमान और भाव मन के उपशम से उत्पन्न होता है। अबुद्धिपूर्वक सातवें में भी है, वो क्या बात है, पहले से भी है। अबुद्धि ग्यारहवें में नहीं लेना। अबुद्धि पूर्वक राग यानी जहां कर्मों का उदय है उस जाति का, वहां पर अबुद्धि पूर्वक राग भी कर्म का उदय बताता है ना, तो जहां तक कर्मों का उदय है वहां तक ही होगा। वैसे सूक्ष्म लोभ है वहां तक होगा वो अबुद्धि पूर्वक, फिर भी उसमें वो लोभ जाति का लेना। देखो इसको पढ़ते, इतना उपशांत माया जीव में जो भाव होता है वह उपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य माया और भाव माया के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत लोभ जीव में जो भाव होता है वह भी औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह द्रव्य लोभ और भाव लोभ के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत राग जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह माया लोभ हास्य रति और तीन वेद रूप द्रव्य कर्मों के उपशम से उत्पन्न होता है। उपशांत दोष जीव में जो भाव होता है वह औपशमिक अविपाक प्रत्येक जीव भाव बंध है, क्योंकि वह क्रोध मान अरति शोक भय और जुगुप्सा रूप द्रव्य कर्मों के बराबर करना उपशम से उत्पन्न होता है। दोष लिखा है, द्वेष नहीं है, दोष ही लिखा है सब जगह। अभी बाकी बात हम कल पढ़ेंगे, अभी नहीं हो पाए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नऊ सदा देत हो। प्रेरणा व्यक्त